ود كثير من اهل الكتاب، چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب میں سے، سب کی بات نہیں ہو رہی، دیکھیں یہاں پہ کون چاہتے ہیں، بہت سارے یعنی میجورٹی ان کی یہ چاہتی ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا بڑا انصاف ہے، جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کسی بھی گروہ کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جیسے جو جتنا جس حد تک اس کے اندر برائی ہے اتنی ہی بیان فرماتے ہیں. جیسے آگے بھی آتا ہے لیسوا سواء، یہ سارے برابر نہیں ہیں، ان میں بھی کچھ ایسے بھی ہیں. اسی طرح یہاں پہ کہا گیا ود کثیر من اہل الکتاب، بہت سارے کثرت میجورٹی ان کی ایسی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں بھی جو بھی انصاف والے ہیں. اور ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ ہر قوم میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انصاف والے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مکہ میں بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، گو وہ مشرک تھے. تو یہاں پہ کہا گیا اہل کتاب میں سے کثیر تعداد ایسی ہے کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن، کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ کاش وہ لوٹا دیں تم کو ایمان کے بعد، تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کے. وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ تم واپس پلٹ جاؤ اور یہ سب چھوڑ دو، یہ اسلام اور اس کی یہ باتیں یہ سب چھوڑ دو. اور یہ افسوس ہے کہ یہ صرف اس زمانے میں نہیں تھا، یہ آج تک ایسا ہی ہے کہ کثیر تعداد ان کی یہ کہتی ہے کہ اسلام کو چھوڑ دیں، اسلام سے خائف ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں اسلام سے. اس میں کچھ ہمارے اپنے بھی قصور ہیں، لیکن ادروائز جو ان کی آگے وجہ بتائی جا رہی ہے وہ وجہ آج بھی ہے. اور وہ کیا وجہ ہے؟ حسد من عند انفسہم، حسد ہے ان کے نفسوں میں. من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے باوجود کہ ان کے پاس حق آ چکا، ان کو پتا ہے، یہ جانتے ہیں کہ یہ صحیح ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پہچان چکے ہیں، اس کے باوجود کیوں ایسا کرتے ہیں، کیوں چاہتے ہیں کہ مسلمان پھر جائیں اپنے دین سے؟ حسد، حسد. اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ حسد ایک بیماری ہے، ایک بیماری ہے یہ، جیسے دوسری بیماریاں لگ جاتی ہیں انسان کو، جسمانی بیماریاں، ایک روحانی بیماری ہے. یہ دل کو خراب کر دیتی ہے، یہ قوم میں آ جائے تو اس قوم کو تباہ کر دے گی، یہ فرد میں آ جائے تو اس فرد کو تباہ کر کے رکھ دیتی، یہ بیماری انسان کو چین نہیں لینے دیتی. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی کچھ کام کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، ان کو چین نہیں آ رہا. اب ان کا کہیں نہ کہیں جیلسی نکل رہی ہے، اور اکثر اوقات انسان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے اندر یہ حسد کے جذبات ہیں. کیسے پتا چلے انسان کو کہ میرے اندر حسد ہے؟ جب کسی کی نعمت دیکھ کے ایک دم دل بجھ جائے نا، ایک دم دل کے اندر ہو کہ ہائے اس کو یہ مل گئی، تو سمجھ لیں حسد آ گیا، حسد ہے اندر. اور حسد پھر کہیں نہ کہیں ضرور نکلتا ہے، جیسے ان کی باتوں میں نکلا تھا نا، اسی طرح. اب انسان اس حسد کے لیے کیا کرے؟ اللہ سے دعا کرے سب سے پہلے تو، کہ اللہ تعالیٰ یہ حسد کو میرے اندر سے ختم کر دے. اس کے اوپر کبھی بھی کوئی ایکشن نہ لے، اگر دل میں خیال آ گیا فوراً اعوذ باللہ پڑھے، کبھی ایکشن نہ لے. تیسری چیز یہ، انسان یہ سوچے کہ اس کو یہ نعمت اللہ نے دی ہے، میں کون ہوتی ہوں اس کے اوپر اعتراض کرنے والی؟ کیا میں اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کرنا چاہتی ہوں؟ اور اللہ تعالیٰ چاہے تو مجھے بھی دے دے، تو میں اس کی نعمت کے اوپر جیلس نہ ہوں کہ کیوں مل گئی اس کو، ہائے اس کو مل گئی. اسی لیے بعض دفعہ کسی کی نعمت دیکھ کے لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں، ان سے کنٹرول نہیں ہو پاتا، کیسے خوش ہو کے دکھائیں، اندر تو آگ لگ جاتی ہے. تو یہ بہت ہی بری بیماری ہے، اور یہ تبھی ہوتی ہے جب انسان کو یہ یقین نہیں ہے کہ جو کچھ خیر کسی کو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے صرف. تو آج کے دور کے اندر یہ، چونکہ ہم اتنے میٹیریلسٹک دور میں رہ رہے ہیں، تو بہت زیادہ اس چیز کا دیکھا گیا کہ لوگوں میں حسد کے جذبات ہو جاتے ہیں، کسی کی بھی نعمت دیکھ کے خوش نہیں ہوتے، بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ خوش ہوں. اکثر اوقات लोगों का हाल ये होता है कि वो जेलसी के मारे चैन नहीं पा रहे होते। फिर वो जेलसी कहीं बातों में निकलती है, कहीं रवैयों में निकलती है, कहीं कहीं कोई और मामलात में जाके निकल आती है, कहीं ना कहीं निकलती है। और हर साहिब नेमत हसद किया जाता है। जिसके पास भी कोई नेमत आती है ना, तो समझ ले हासिद पीछे लग जाते हैं। तो उसको भी चाहिए कि वो अपने लिए हिफाजत की दुआएं पढ़े, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। तो जो हसद ही होता है ना, तो फिर लोग जादू भी कराते हैं। वो हसद जो नहीं चैन लेने दे रहा, अब जादू कराएंगे, अब कभी कुछ करेंगे, कभी कभी धागे फलां ये वो चीजें, बस सिर्फ इससे ये नेमत क्यों मिल गई, वो चीज उनको दिन रात चैन नहीं लेने देती। नेमत मिल गई या ये क्यों इतनी खुश है, या इसके पास क्यों ये सब कुछ आ गया, या इनको क्यों तरक्कियां मिल गई, या क्यों ये इतने अच्छे रह रहे हैं, ये तो बड़े खुश लगते हैं। तो ये चीज हसद है। और ये इस बनी इसराइल की जो यहूद की कौम थी, इनमें से अक्सरियत का ये प्रॉब्लम हो गया था। और हसद किस बात पे था, इनको क्यों ये मिला कि ये इनके अंदर आ गए प्रॉफिट, ये हसद था। या देख लें फिर इस हसद ने इनका क्या बेड़ा गर्क कर दिया। उनमें से बहुत ही कम को ईमान लाए, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में आता है, वो ईमान लेकर आए, बहुत कम। यानी ये लोग ज्यादा ईमान की तरफ नहीं आए, इस हसद ने इनको आने नहीं दिया। तो देखिए हसद कैसे इंसान को खैर से महरूम कर देता। हसद से पनाह मांगनी चाहिए अल्लाह की। तो अब क्या, जब हसद उनके अंदर है, तो अब वो क्या चाहते हैं, इनको भी क्यों ये ईमान की दौलत मिल गई, इनसे भी ये छिन जाए, ये भी अपने इस पे ना रहे, फिर तब मजा आएगा। तो इस वजह से ही फिर ये कहीं कुरान पाक में बातें ऐसी निकालते, देखो तुम्हारे तो नबी ने ऐसे, आगे आपको पता चलेगा किबले की बातों के ऊपर, इन्होंने जब तहवीले किबला हुई इन्होंने कितनी बातें बनाई। कभी कोई चीज ले आते, कोई शोशा निकाल के ले आते, मुसलमानों के कानों में फूंक देते और मुसलमानों को उकसाते थे, उनको उनको उनके दीन से बदजन करना चाहते थे ना, कि ये भी अपने दीन से मुतनफिर हो जाए, ये कैसा दीन है, ये क्यों फिर ऐसे कहता है। अब जैसे नसब की बात आपको बताई थी, ये क्या बात हुई, अगर अल्लाह की तरफ से ही सारी है तो फिर पहले ये हुक्म था, अब ये हुक्म आ गया, ये क्या बात हुई। तो फिर वो देखे हसद ने कहीं चैन तो ना लेने दिया। हसद में ये होता है दूसरे की नेमत के जवाल की ख्वाहिश होती है। अब मुझे मिले ना मिले, इससे नहीं होता कि मुझे जरूर मिल जाए, इसको इसको ना मिले, और जब उससे कभी नेमत छीन जाए या उसका कोई परेशानी आ जाए, तो फिर ऊपर ऊपर से चाहे बोलते रहे लेकिन अंदर दिल में आता है कि अच्छा हुआ चलो ऐसे हो गया, अंदर दिल में बड़े इत्मीनान हो रहा होता है। हसद पता है इतनी बुरी बीमारी है कि ये नेकियों को ऐसे जला देती है, ऐसे खत्म कर देती है, जैसे आग से लकड़ी जल जाती है ना, हदीस में आता है, इस तरह ये नेकियों को जला देता है हसद। और अक्सर इर्द गिर्द के लोगों में ही होता है, ऐसे नहीं होता कि मसलन है कि हम हसद करने लगे कि फलां प्रेसिडेंट क्यों बन गया, इस मुल्क का प्रेसिडेंट क्यों, अब उससे हम हसद करें, ऐसे नहीं होता। हसद वो अपने करीबी लोगों से ही होता है। अब इसका इलाज क्या है, मुसलमानों को क्या कहा गया, अब आप क्या करो। देखें आप देखेंगे यहां पर कि इतना यानी इंसान के लिए एक हैरत होती है कि अच्छा हमें ये करना है, क्योंकि अक्सर हम इस तरफ नहीं जाते। क्या अल्लाह ताला ने बताया, फाफू वस्फाहू, माफ कर दो जाने दो दरगुजर को। क्योंकि होता यह है कि जब इंसान को ये होता है ना, फलाह में इसे हसद कर रहा है या कोई कौम हसद कर रही है या ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं। आप देखते हैं कि आज मसलन अगर एक कौम के तौर पे लिया जाए, तो मुसलमानों से हर जगह उनके पीछे पड़ जाना, चाहे मीडिया उठा के देख लें, चाहे सियासतों में देख लें, चाहे दुनिया में जितने हालात चल रहे हैं आप देख लें, तो उसके बाद मुसलमानों का रिएक्शन क्या होता है, तखरीबी कार्रवाइयां, कभी कहीं फट रहे हैं, कभी कहीं तोड़फोड़ कर रहे हैं, कभी चीजें जला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। उससे क्या होता है, उनको और मौका मिल जाता है कि देखा हमने तो कहा था ये ऐसे ही, देखा ये ऐसे ही है। मुसलमानों को कहा गया फाफू वस्फाहू, इंडिविजुअल्स में भी ऐसे होता है जब आपको पता चल जाए ना फलां मेरे से हसद करता है, अगर शक भी हो गया उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसे मिलना जुलना बंद कर देते हैं, या जहां वो मिले उसको कुछ ना कुछ सुना देते हैं, क्योंकि दिल में क्या बात है कि ये तो मेरे से हसद करती है। अब उससे उस शायद हो सकता है वो हसद ही ना करता हो, आपको शक बढ़ गया, वो परेशान है कि भाई इसको हो क्या गया मेरे साथ। अब उसको तो नहीं पता कि आप क्या अपने दिल में सोचे बैठे हैं। अब आप कभी कहीं उसको कुछ सुना रहे हैं, कभी कुछ उसको कह रहे हैं, कभी आपकी टोन बदली भी होती है, कभी आपके अल्फाज के अंदर कड़वाहट होती है। तो अब दूसरा इंसान समझ नहीं पाता, उस वक्त भी जरूरत नहीं है ऐसी चीजें करने की। कभी फिर हम उनकी गइबतें करते हैं, कभी कुछ करते हैं, उस वक्त क्या करो, फाफू वसवा, जाने दो, दरगुजर करो, सरफे नजर करो। आप ना अब शुरू हो जाओ इस कामों के अंदर कि अब हम इनका देखो कैसे मुकाबला करते हैं, अब हम भी कुछ करेंगे, अब हम भी इनके साथ ऐसे करेंगे, अब उनके साथ बदले लेने की तदबीरें ना शुरू कर दो। आप अपने आप को स्ट्रांग करो, आप अपना काम करते जाओ। और आपको पता है ये दीन के लोगों में भी आ जाता है, दीन वालों में भी होता है, फलां क्यों आगे निकल गया, उसके पास क्यों इतने लोग आ रहे हैं, वो क्यों इतनी तरक्की कर रहे हैं, वहां पे भी हसद आ जाता है। तो तब क्या करना है? तब अगर देखें एक इंसान सारे काम छोड़ के बस इसमें बैठ जाए, अब हम इनका कैसे मुकाबला करें, अब हम इनको कैसे तोड़े, अब हम इनको कैसे इस चीज का जवाब दें, ऐसा जवाब दो कि पता चल जाए इनको, अगर इसमें पड़ गए तो असल काम कहाँ जाएगा। बजाय कि मुसलमान एज अ नेशन, एज उम्मत अपने आप को मजबूत करें इल्मी मैदान में, इल्मी मैदान में आगे जाए, क्योंकि आज दुनिया के अंदर जो जंगे हैं वो इल्म की बेसिस के ऊपर, उसमें तरक्कियां, उसकी वजह से नेशंस आगे, बजाय के उस तरफ कोई तवज्जो दें, अपने दीन ईमान को मजबूत करें, उल्टा हम क्या करने लगते हैं, तखरीबी कारवाने। इंडिविजुअल लेवल पे भी यही है, आप अपना काम करते रहें, आप अपनी हिफाजत के लिए अपनी दुआएं पढ़ें, और फिर उसके बाद उसको छोड़ दें उसके हाल पे, जो हसद की आग में जल रहा है वो अपना बेड़ा गर्क कर रहा है। लेकिन हमारा क्या है, अब सारा टाइम हमने ये, अच्छा तुम बताओ कि वो क्या कर रही थी, क्या कह रही थी, अच्छा तुम्हारे पास आई थी कुछ उसने कहा था, अब हमें सारा वक्त ये जासूसी में पड़ गए हैं कि वो क्या कहती है लोग, उसने वहां पे आई तो उसने क्या किया, वो किधर गई, उसने क्या, अब हमारी सारी एनर्जी किधर लग रही, इन्हीं कामों के में वो जो हासिद है, अब हमने तो उसके पीछे अपने आप को लगा दिया, हम अपना आप भी खराब करते हैं फिर। तो ये तरीका नहीं है हसद से डील करने का, फाफू वसवा। और आपको पता है ये दो लफ्ज अल्लाह ताला कुरान पाक में किसके लिए और लेकर आए, फैमिली के लिए, फैमिली के लिए, हाँ, कि इनसे दरगुजर करो, बीवी बच्चों के लिए जाने दो, छोड़ दो, बात को छोड़ भी तो देना चाहिए, या उसको लेकर बैठ गए एक दफा किसी के पे शक क्या हो गया, कि क्योंकि 100% तो किसी को यकीन नहीं हो सकता ना, बस एक दफा शक पड़ गया, अब बस उसको छोड़ना नहीं, सारी जिंदगी के लिए उनके साथ एक बैर लेके बैठे। कुरान कह रहा है फाफु वस्फा, और यही हमें उम्मते मुस्लिमा के तौर पे भी करना, हम आगे चलते रहे, हम आगे बढ़े, ना कि बस कुछ लोगों का सारा वक्त काम किया है, आपको पता है फलां हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है, फलां जगह पे साजिशें हो रही, ये होने लगा, हर टाइम फियर मॉन्गरिंग, ऑल द टाइम लोगों में खौफ फैलाते रहना, क्या मिलता है इससे? और आधे लोग हमारे साइको हो चुके हैं खौफ में रह रह के, आपको पता है वो नोट करते हैं, आपको पता है ऐसे हो रहा है, वो जो है ना वो पीछे लग जाते हैं, वो चेक करते हैं मस्जिदों में कौन आ रहा है, वो चेक करते हैं फलाने, क्या हो गया मुसलमानों को, वो जो भी करते रहे, आपका ईमान किसके ऊपर है, क्या अल्लाह पर कोई ईमान है या नहीं, अल्लाह ताला है भी या नहीं बताएं, या उसकी कुदरत है या नहीं, खौफ खा खा के हम मर चुके हैं, बस हमारी सारा हमारा ब्रेन किसमें है, दूसरा क्या कर रहा है, हमारे खिलाफ क्या साजिश हो रही है, और वो साजिशों के वो ताने बाने ढूंढते रहते हैं और बुनते रहते हैं खुद ही बैठ बैठ के, अब ऐसे होने वाला है, अब ये हो जाएगा, तो हो भी जाएगा तो आप बंद तो नहीं कर सकते, अगर कुछ होने वाला है आपका काम क्या है? अपने ईमान को मजबूत करना, अपनी जो ताकत है उसको गैदर करना, हर मैदान में ताकतवर होने की कोशिश करना, ये होना चाहिए एम। चाहे वो हथियार हैं, चाहे वो इल्म है, चाहे वो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो तिजारत है, चाहे जितने मैदान हैं, इनमें स्ट्रांग हो। हम सारी अपनी एनर्जी किधर लगाते हैं? तखरीबकारी में, तोड़ फोड़ में, और ये हमारा गुस्सा निकल रहा है। अपने गुस्से को पॉजिटिव जगह पे लगाएं, उसको अपनी एनर्जी बनाएं और ज्यादा काम करें। कैसे यहूद आज आगे निकल गए और आज इतना इतना सा मुल्क है और कितना स्ट्रांग है, कैसे निकले? खामोशी से काम करते रहे। हिटलर ने उनको बहुत मारा था, उठे ना वो, जो भी उन्होंने किया, जैसे भी किया, उसके ऊपर नहीं हम जाते, लेकिन उन्होंने कोई तकरीबी कार्रवाइयां नहीं की, खामोशी से करते रहे अपना काम, और फिर देखो कैसे ताकत बंद करे उभरे। आज देखें जो बड़े बड़े अवार्ड्स हैं वो किन को मिलते हैं? इल्म है। आप इल्मी मैदान के देखें, सारे अवार्ड निकाल के यहूद के पास है। बड़े बड़े प्रोफेसर देखें, साइंटिस्ट देखें, कौन है? और हम सिर्फ लड़ने मरने और रोने धोने के अंदर ही लगे रहे, और ये सोचने में कि किसने हमारे खिलाफ क्या साजिश की है। किसी ने कहा वो पता है ऐसा होने वाला है, वो हमें इस तरह से पकड़ने वाले, अब तो मुसलमानों की ये शामत आने वाली, क्या इससे मिलेगा? तो हमें अपने आप को देखना है कि हम किस थिंकिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और ये पॉजिटिव है, ये प्रोडक्टिव है, या ये नेगेटिव है, और हमारी रही सही एनर्जी भी इसमें जा रही। तो ये आयत हमें बहुत बड़ा सबक देती है कि चलना कैसे है। और यहाँ पे कहा गया, आगे आगे जगहों पे यहाँ पे क्या गया था? फाफू वस्फा। इसी तरह सूरह आले इमरान में भी है ऐसी ही बात। अल्लाह ताला ने फरमाया, आयत का हिस्सा है 186 आयत है, वला तस्मउना मिनल लजीना उतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लजीना अशरकु अज़न कसीर। अल्लाह ने उस वक्त बता दिया तुम्हें सुननी पड़ेगी, ये जो पीपल ऑफ द बुक हैं, अहले किताब हैं, जो तुमसे पहले गुजरे हैं, इनसे भी और जो मुशरिक हैं इनसे भी बहुत तकलीफ दे बातें सुननी पड़ेगी। लेकिन वह इन तस्बीरू व तत्तकू फइन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। अगर तुम सबर करो और तुम तकवा इख्तियार करो, ये बड़े हिम्मत के कामों में से है। ठीक है, तो वहां पे तस्बीरू और तत्तकू कहा, यहाँ पे क्या कहा? फाहू वस्फहू। और ये भी तभी आएगा ना जब सबर होगा अंदर, जब तकवा होगा, तभी दरगुजर कर सकेंगे, जाने देंगे कि मैंने काम करना है, मैं इस दुनिया के अंदर ये चीजें करने नहीं आई कि लोग मेरे खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ना है, वहां अपनी एनर्जी लगाएं। हत्ता याती अल्लाहु बि अम्री, यहां तक कि अल्लाह कोई फैसला ले आए अपना। और देखें मुसलमानों ने ऐसा ही किया, वो जब मदीना आए थे तो उनको पता था कि ये यहूद हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं था क्या? अल्लाह ताला ने क्या फरमाया उनको? ये नहीं कहा कि यहूद तुम क्यों ये कहते हो, मुसलमानों से कहा तुम ही वो लफ्ज चेंज कर दो, तुम वो लफ्ज ही ना कहो जिसको इन्होंने जिससे एक प्रॉब्लम बनाया। मुसलमानों को कहा गया, मुसलमानों से कहा जा रहा है जाने दो दरगुजर कर, उनसे कुछ नहीं कहा जा रहा, अभी इनसे निपटने का वक्त नहीं है। पहले मुसलमान स्ट्रांग हुए, फिर देखो उनका मुकाबला किया, और जब आते ही नहीं शुरू कर दिया उन्होंने कि ये ऐसे करते हैं, अब इसका ये बदला, ये ऐसे करते हैं, जब बदला लिया तो फिर ऐसा लिया कि फिर उसके बाद यहूद उठ नहीं सके थे, उनको जाना पड़ा था मदीना से। इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। काश हमें इस बात पे यकीन आ जाए कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। हमें लगता है कि बहुत सारे और लोग हैं जो हर चीज पे कुदरत रखने वाले हैं, वो हमें ये करेंगे, वो हमें वो करेंगे। क्या सब चीजें इंसानों के हाथ में? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मोमिन का ये जो बिलीफ है ना, ये इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि फिर किसी का खौफ नहीं रहता। और क्या करो? वाकई मुसलाता व आतुज़्ज़का, कायम करो नमाज, करो और अदा करो जकात, तुम अपने आप को पॉजिटिव तरफ लगाओ। नमाज से क्या होगा, दिली सुकून मिलता है जब इंसान मुसल्ले पे खड़ा हो जाता है और अल्लाह से बात करता है और अल्लाह को अपनी सुनाता है, तो फिर देखेंगे कैसा उसको ये जो डिप्रेशन और एंजाइटी इसकी खत्म हो जाती है। और जब इंसान देता है, स्पेंड करता है अपना माल, तो ये भी दिल के सुकून का बाइस बनता है। यकीन जाने, चीजें खरीदने के आप एक ये कभी करके देखिएगा, वैसे शायद नहीं समझ आए, चीजें खरीदने में वो अपनी पसंद की बाजार जाएं, चीजें खरीदें, उतनी खुशी नहीं है जितनी जब आप किसी को, ऐसे नहीं है इंटरनेट पे बैठ के देना नहीं या किसी डोनेशन बॉक्स में डाल देने की बात नहीं कर रहे, जब आप किसी को देखते हैं कि कोई बहुत पिसा हुआ है, रुला हुआ है, और आप उसके हाथ के ऊपर पैसे रखते हैं, वो जो खुशी है ना देने की, वो कहीं ज्यादा है उस खुशी से जो आपको मिलती है जब आप बाजार से चीज खरीदते हैं। ये करके देखिएगा एक्सपेरिमेंट, मेरा शर्त ये है कि आप देखें किसी की हालत और उसके बाद जो स्माइल उसके फेस पे है, आप किसी यतीम की हेल्प करके देखें, किसी मिस्कीन को दे के देखें, फिर आप देखें कि वो कितनी ज्यादा खुशी है। तो अल्लाह ताला ने कितनी पॉजिटिव तरफ लगाया, डिस्ट्रक्शन नहीं एक मोमिन का काम नहीं है, वो तो जंग में भी डिस्ट्रक्शन नहीं करता, जंग में भी इमलाक को नुकसान पहुंचाना मना है, जंग में भी बूढ़ों और बच्चों और औरतों के ऊपर हथियार उठाना मना है, और हमारा क्या काम हो गए, हम तो सबक ही भूल गए ना, तभी तो जलील हो रहे हैं दुनिया के अंदर, तभी तो अल्लाह की तरफ से है ये जिल्लत, क्योंकि तो अपना दीन छोड़ दिया। तो फरमाया अकीमुस्सला व आतुज़्ज़का, सोल्यूशन कितना प्यारा है, काम करो, आगे बढ़ो, पॉजिटिव तरफ अपने आप को लगाओ, और नमाज को ना छोड़ना, और दो लोगों को खर्च करो उनके ऊपर। अल्लाह से कनेक्शन बनता है नमाज के जरिए, इंसानियत के साथ कनेक्शन बनता है ज़कात के जरिए। वमा तुकद्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, जो भी तुम आगे भेजो अपने नफ्सों के लिए, कोई भी भलाई तुम पाओगे अल्लाह के पास, अल्लाह भूलता नहीं है। सिर्फ नमाज और जकात नहीं, कुछ भी भलाई करोगे अल्लाह ताला के हाँ उसके बैंक में स्टोर हो जाती है, वो तुम्हें शायद आज नजर नहीं आ रहा, मगर यकीन रखो कि अल्लाह के पास है जो भी तुम आगे भेजो, मीन खैर इन किसी भलाई में से भी, ये इन्वेस्टमेंट है तुम्हारी, इसको पालोगे तुम अल्लाह के पास, और इसका यकीन रखो कि मुझे मिलेगा, और किस वक्त मिलेगा, किस वक्त मिलेगा। हाँ आप देखें, आप डालते हैं ये बीसी या कमेटी जिसको कहते हैं, कि हाँ बेटी की शादी है, मुझे उस वक्त चाहिए इतने पैसे, या मेरी फलां जरूरत है, मुझे उस वक्त चाहिए, तो आप उसके लिए डालते हैं, और आपको ये होता है कि फलां वक्त में मिल जाएंगे, मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी, उसके लिए भी तो डालते हैं ना आप, क्योंकि आपको यकीन होता है कि वहां पे मिल जाएगा। लेकिन अल्लाह के बैंक में डिपॉजिट कराते हुए क्यों यकीन नहीं होता कि पता है कब मिलेगा, और हमें तो आज यहां जरूरत है, ये मेरी शॉपिंग है, ये मेरी जरूरियात है, आज क्यों मैं दू, इसलिए मैं दू क्योंकि मुझे उस दिन सबसे ज्यादा जरूरत होगी। आज तो कोई बेटी की शादी की जरूरत है, बच्चे की फीस पे करने की जरूरत है, या कोई और किस्म की जरूरतें, ये बहुत छोटी जरूरतें हैं। ये वाले पैसे जानते हैं कहाँ मिलेंगे, जिस दिन कोई देने वाला नहीं होगा, सब कह रहे होंगे हमें चाहिए, जिस दिन कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, उस दिन ये मिलेगा, और इससे ज्यादा बड़ी क्या बात हो सकती है कि जो मेरा सबसे ज्यादा मुश्किल दिन है उस दिन मुझे मिल जाए। इन अल्लाह बिमा तामलून बसीर, जो भी तुम अमल कर रहे हो अल्लाह उसको देख रहा है, देखने वाला है, उसने तो हर हर अमल गिन गिन के रखा हुआ है, गिन गिन के रखा है, वो जरूर अजर देगा क्योंकि वो देख रहा है। वकालू, और वो कहते हैं, कौन कहते हैं, यही अहले किताब जिनकी पहले बात हो रही है, यदखुल अल जन्नत इल्ला मन काना हूदन औ नसारा, जन्नत में तो हरगिज कोई और दाखिल नहीं होगा सिवाय यहूदी के या ईसाई के। वैसे ये आपस के अंदर बहुत लड़ते थे लेकिन मुसलमानों के खिलाफ एक हो गए, कहते और तो किसी ने जाना ही नहीं, सिर्फ यहूदी जाएगा या ईसाई जाएगा। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अरे इतना ज्यादा उनको घुमंड था, इतना ज्यादा उनको अपनी इसके ऊपर था कि हम सिर्फ जाएंगे, यानी मुसलमान कोई भी नहीं जाएगा, और सिर्फ आपको इस फिरके से होना चाहिए, यानी या तो यहूदी होना चाहिए या ईसाई होना चाहिए ताकि आप जन्नत में जा सकें, अगर आप ये नहीं हुए तो फिर आप नहीं जा सकते। ये नए नए इस्लाम लाने वालों को भी इस तरह बहकाते थे। तिलका मानी यू हूँ, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, उनका जवाब नहीं दिया, अल्लाह ने फरमाया ये ठीक है, फिर इनकी विशफुल थिंकिंग है, ये सोच रहे हैं ऐसे तो सोचते रहे। आप इनसे कहें कुल हा तू बुरहाना कुम इन कुन तुम सौ देते, तुम फिर कोई दलील लेकर आओ ना इसकी, अगर तुम सच्चे हो, कहाँ पे कोई लिखा हुआ है तौरात में इंजील में कहीं, वहां पे तो इनको 10 कमेंडमेंट्स दी गई थी जिसमें था कि भाई आप सबसे पहली बात थी कि आप शिर्क नहीं करेंगे, तो शिर्क करने वाले को कैसे जन्नत मिल सकती है। तो ये इनकी विशफुल थिंकिंग है, इसी तरह हमने विशफुल थिंकिंग हमारी क्या है, अब बस कुछ भी ना करो, सिर्फ अपना एक बी के हम एक बॉन्ड मुस्लिम है, चाहे कोई इस्लाम का पता है नहीं है, चाहे कोई कलमे का मतलब आता है नहीं आता है, कुछ भी नहीं है, तब भी हमने ही बस जन्नत में जाना, बाकी सब जहन्नमी। ये कहां से आया कि कौन, ये सिर्फ नाम रख लेने से एक मुसलमानों वाला, या सिर्फ एक मुसलमान घराने में पैदा होने से आप जन्नती हो गए। तो ये सोचते थे कि इस्लाम तो नया नया आया, हम तो पहले से हैं, हम तो स्पेशल हैं, इसलिए हम तो जन्नती हैं। तो अल्लाह ताला ने बुरहान लाने के लिए फरमाया। इसी तरह जब अल्लाह ताला की देखें ये सुन्नत है, पता चली ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनको कोई दलील लेकर आओ, इसी तरह हमें भी जब कोई ऐसी बातें कहे तो हमें कहना चाहिए आप कोई दलील लाए, ये नहीं कि अंधों की तरह हर एक की बात के ऊपर यकीन कर लें, उसने कहा ये कर लो तो उसको उसकी बात मान ली, भाई आप दलील पूछें कि देखें इसकी कोई कुरान में कोई हदीस में कोई इसकी दलील है, हम दलील नहीं पूछते, बस अंधाधुंध इसीलिए इतनी बिद्दतों में पड़ जाते हैं क्योंकि जहां पे कहीं किसी का कोई कोट देख लिया कोई, अब तो खैर हम अपना दीन ही व्हाट्सएप से लेते हैं, वहां पे कोई चीज देख ली तो बस अंधाधुंध उसको शुरू कर देते हैं करना। तो नहीं, हाँ तू बुरहाना को ये कहना सीखे, दलील लाए, अगर आप सच्चे हैं तो दलील लेकर आए, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आप दलील मांगे। बला क्यों नहीं, मन असलम वजहहू लिल्लाह व हुवा मुहसिनुन फलहू अजरुहु इंद रब्बिही, किसके लिए है जन्नत, किसके लिए बख्शिश, किसके लिए अल्लाह के हाँ मकाम, इसकी इस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कहता मैं यहूदी हूं या मैं ईसाई हूं, हाँ जो असलामा वजहहू लिल्लाह, जिसने सपुर्द कर दिया, असलामा सबमिट कर दिया, वजहहू वजह अपना चेहरा अपना, चेहरे से मतलब क्या है, चेहरा इंसान के वजूद का जो होता है ना एक सबसे एक अहम पार्ट है, जब चेहरा कह दिया तो इंसान का अपना आप ही हो गया ना, कि जो इंसान अपने आप को अपनी जात को झुका दे अल्लाह के आगे सपुर्द कर दे। हम ठीक है नमाजों में तो बहुत दफा सर को झुकाते हैं, सजदे में लेकर जाते हैं अपने आप को, कभी आपने ऐसा सोचा कि क्या ये सिर्फ एक फिजिकल सजदा है या वो वाकई में अल्लाह के आगे झुक गई हूं, मेरी अकल मेरी समझ मेरी थिंकिंग मेरी ख्वाहिशात मेरी जात सब कुछ मेरी मर्जियां ये सब झुकी हैं कि नहीं अल्लाह के आगे, या सिर्फ सर नीचे डाल दिया जैसे कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस भी तो ऐसी होती हैं, नीचे हो ऊपर हो एक्सरसाइज भी तो होती है, मैं सिर्फ एक्सरसाइज कर रही हूँ या वाकई मैं शऊर के साथ अपने आप को अल्लाह के आगे झुका रही हूँ, ये शऊरी सजदा करते हैं आप, सजदा बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए किसी और के लिए जायज नहीं सिवाय अल्लाह के, किसी को नहीं आप सजदा कर सकते क्योंकि बहुत बड़ी चीज है, लेकिन कभी सोचा आपने कि हम सजदे में क्या करते हैं, क्या हम दिखा रहे हैं कि अल्लाह ताला मैं झुक गई सारी की सारी तेरे आगे। ये सर के अंदर ही अकल है ना, तो जब हम सजदे में जाते हैं तो क्या नहीं कह रहे होते कि मैंने अपनी अकल तेरे आगे डाल दी। फिर उसके बाद सजदे से उठ के ये क्यों कहते हैं, मेरी अकल में तो नहीं ये बात आती, मेरी समझ में तो नहीं आती। आपने तो अपनी समझ अल्लाह के आगे जमीन पे रख दी, झुका दी, सबमिट कर दिया अपने आप को। तो असलामा क्या है, सपुर्द कर देना, सबमिट कर देना। इसी से इस्लाम है ना। इस्लाम का भी मतलब क्या है, टू एक्वायर पीस बाय सबमिटिंग योर विल टू अल्लाह सुभान व तआला। यानी क्या मतलब कि अमन और सलामती हासिल करना अपनी रजा को रब के हवाले करने के बाद, ये है इस्लाम का माना। इसीलिए आप देखते हैं ना, कहीं इस्लाम का माना पीस कहा जाता है, कहीं सबमिशन कहा जाता है। तो दोनों माने हैं इस्लाम के, अमनो सलामती और सरे तस्लीम खम कर देना, सबमिट कर देना। जब सर झुकाओगे तो सलामती मिलेगी। सर को अपने आप को डाल दो अल्लाह के आगे, सबमिट कर दोगे अपनी विल को अल्लाह के आगे, तब आपको पीस मिलेगा। तो इसमें क्या है फिर कि अल्लाह की मर्जी को मान लेना, खुद को नीचा कर देना। लेकिन क्या हम वाकई फिर इस्लाम लाए शौरी तौर पर, सरेंडर कर दें अपने आप को, सरेंडर कर दें अपनी ख्वाहिशात को, हवाले कर दें अपने आप को अल्लाह के आगे। तो ये जरूरी है इसके अंदर, जो ये बात है ना कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात, मगर बात बहुत बड़ी है। हम कह तो देते हैं मुंह से कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना मरना मेरे अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए, मगर क्या ऐसा है? तो जो अपने आप को झुका देता है अपनी जात को अल्लाह के आगे, अपने जज्बात को, एहसासात को, ख्वाहिशात को अल्लाह की विल के अंडर कर देता है, जो अल्लाह तू नहीं चाहता तो मेरा भी दिल नहीं चाहता ये करने का, अल्लाह तूने मना किया तो बस मैं मनाऊंगी, अल्लाह तेरा हुक्म है तो बस तेरा हुक्म सर आंकूंगा, बस आगे क्या पूछना। अभी ये नहीं कि मैं साइंटिफिक फैक्ट्स देखूंगी, पहले मैं गूगल पे सर्च करती हूँ उसका फायदा क्या है, रोजे का फायदा क्या है, पहले मैं ये सर्च करती हूँ कि नमाज के क्या फायदे हैं, अच्छा इससे तो एक्सरसाइज भी अच्छी होती है, ये तो योगा की तरह है, तब मैं पढ़ रही हूँ, अब मेरा दिल शरा सदर हो गया, अब मुझे इत्मीनान हो गया। नहीं, बस अल्लाह ने कह दिया तो कह, अल्लाह ने कह दिया ना। अच्छा, अगर कह दिया राइट हैंड से खाना, पहले मैं ये देखूंगी इसके फवायद क्या है। अच्छा, मुझे साइंस के कुछ चीजें मिल गई तो हम दिल बड़ा मुतमईन है। अगर वैसे कहा गया था राइट से खाना तो तब नहीं कुछ था, पानी पीना है तो तीन सांस लो बर्तन से बाहर, ये सुन्नत है। वैसे साइंस बता दे तो मैं बहुत अच्छा समझ आता, लेकिन सुन्नत में हो तो फिर कुछ नहीं, कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं। तो अपने आप को झुकाना ये सीखना पड़ेगा, ये मैंने झुक जाना है। वह हुआ मोहसिन, और वो मोहसिन भी है। मोहसिन कौन होता है? एहसान करने वाला। एहसान करने वाला कौन होता है? ये नहीं है वो वाला नहीं कि जो मैंने किसी के एहसान कर दिया कि मैंने उसको कुछ दिया है, वो वाला नहीं। मोहसिन का मतलब यहाँ पे ये है इत्तेबाए सुन्नत, क्योंकि मोहसिन क्या है? जो एहसान करता है। एहसान में क्या है? हुसन है, हुसन से है ना ये वर्ड, हासीन नून, हुसन समझते हैं ना, सारे हुसन को समझते है ना, खूबसूरती। तो जो अपने सारे काम खूबसूरती से करने वाला, और सबसे ज्यादा खूबसूरती किन कामों में है? जो सुन्नत के मुताबिक है। अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो मैं चाहे जितना मर्जी उसको ये समझूं कि ये काम बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, वो अच्छा नहीं हो सकता जब तक वो सुन्नत के मुताबिक ना हो। ठीक है, तो किसी चीज में भी, किसी अमल में भी आपने हुसन पैदा करना है ना। मसलन इबादत में आप चाहती हैं कि मेरी इबादत में हुसन हो, ब्यूटीफुल। देखो, हर चीज को हम ब्यूटीफुल चाहते हैं, अपने आप को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, कपड़े चाहते हैं मेरे खूबसूरत हो, मेरी चेहरा बड़ा खूबसूरत लगे, मेरा घर बड़ा ही खूबसूरत हो, मेरी गाड़ी बड़ी खूबसूरत, हर चीज में हुसन चाहते हैं। इबादत में कभी हुसन चाहा? ये इबादत बड़ी खूबसूरत, इतनी प्यारी हो। कभी उसने चाहा, कभी चाहा कि मेरे मामलात बड़े खूबसूरत हो। मेरे मामलात यानी क्या मतलब? मामलात यानी मेरा सोना, जागना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, ये बड़ा खूबसूरत। तो देखिए खूबसूरती इन चीजों में कैसे आएगी? मेरे रिश्तों में खूबसूरती आ जाए, मेरे लोगों के साथ डीलिंग्स में खूबसूरती आ जाए, कैसे आएगी? जब ये सब सुन्नत के मुताबिक होंगे। जब मैंने इबादत में खूबसूरती लानी है ना, तो मैं देखूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इबादत करते थे। अच्छा, तहज्जुद पे उठते थे तो क्या करते थे फिर? अच्छा, नमाज कैसे पढ़ते थे? अच्छा, वो कुरान पाक कैसे पढ़ा करते थे? अच्छा, फिर मामलात लोगों के साथ थे तो वो अपनी बीवियों के साथ कैसे थे, अपनी औलाद के साथ कैसे थे, अपने हमसायों के साथ कैसे थे, अपने दोस्तों के साथ कैसे थे। ये है ना मामला। फिर उसके बाद जिंदगी गुजारने के तरीकों में उसमें देखना है, तो देखें कि उठते कैसे थे, बैठते कैसे, सब चीजें तो हमारे पास हैं। तो मोहसिन बनना है तो उनके मुताबिक चले, मोहसिन बन जाएंगे। और फिर देखिए मोहसिन इसकी क्या डेफिनेशन बताएगी? एहसान क्या है? क्या है? जब जिब्राइल अलैहि सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि सलाम से आके पूछा था ये क्वेश्चन कि बताएं एहसान क्या चीज होती है, एहसान करने वाला मोहसिन बनता है ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि सलाम ने क्या फरमाया था? कि वो ऐसे इबादत करे जैसे वो अल्लाह को देख रहा है, और अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम ये हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। चलो हम ये नहीं इमेजिन कर सकते कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह हमें देख रहा है। देखें जो काम भी किसी ने देखना हो ना, मसलन है वैसे हम घर में गंदे तो गंदे फिरते रहे, लेकिन जब हमें पता चले कोई आ रहा है तो हम फौरन चेंज करते हैं। क्यों? किसी को देखेगा तो क्या कहेगा? वैसे चाहे घर टूटा फूटा पड़ा रहे, लेकिन जिस वक्त किसी ने आना है तो बड़ा सफाइयां कर रहे हैं। तो हम लोगों के देखने को कितना कंसिडर करते हैं ना, कि कोई देखेगा। आपके नोट्स हैं, अगर आपको कल कह दिया जाए आप अपने आज के सारे नोट्स आपको कल पिक्चर लेके भेजनी है, तो आप कितने अच्छे बनाएंगे? भाई किसी ने देख लिया है ना, डिस्प्ले होंगे कल। तो जो चीज भी किसी ने देखनी होती है हम उसका बड़ा एहतमाम करते हैं। सोचिए इंसानों के लिए इतना एहतमाम है, तो जो अल्लाह ने देखनी हो चीज, मैं किसी फकीर को कुछ दे रही हूं, ये अल्लाह देख रहा है, ये अल्लाह ने देखना है मेरा काम, और वो देख रहा है इस वक्त, वो उसमें कितनी खूबसूरती होनी चाहिए। जो इबादत है ये अल्लाह देख रहा है, वो नमाज कैसी होनी चाहिए, फिर वो कुरान पढ़ना कैसा होना चाहिए, ये जो हम इस वक्त बैठे हुए अल्लाह हमें देख रहा है, इसमें कितना हुसन होना चाहिए। हाँ, या मारे बांधे का हो, मारे बांधे का तो तब बंदा करता है ना जब कोई नहीं देख रहा हो, तो कहता चलो ठीक है सर से उतारा, वो तो गया ना। लेकिन जब भी किसी ने देखना होता है हम बड़ा एहतमाम करते हैं। जब हमारा खाना किसी ने खाना होता है बाहर वाले ने, हम कितना एहतमाम करते हैं, बहुत अच्छा बने उसने खाना है। और जितना कोई प्यारा होता है उतना ही ज्यादा हम उसके लिए ज्यादा ब्यूटीफुल करते हैं। जिसको अल्लाह प्यारा होगा ना उसके लिए बहुत ज्यादा एहतमाम करेगा। इसी से पता चलता है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत कितनी है हमारे अंदर, कि हम मामलात में कितना हुसन लेकर आते हैं उसको दिखाने के लिए कि वो देख लेना, क्योंकि हमारा तो हर अमल वो देख रहा है। मैं अब सो रही हूँ, जाग रही हूँ, कोई भी नहीं देखता, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। उसमें हुसन लाने की कोशिश की कभी? खाना खा रहे हैं कोई भी नहीं है, अल्लाह तो देख रहा है कैसे खा रही हूँ, उसमें हुसन लाए ना। तो मोहसिन बनना, जब वो बन गए, ये दो चीजें कर ली, असलम वजहू लिल्ला, और इसमें इखलास आता है। इसमें जब इंसान अपने आप को झुकाता है ये खुलूस है, और मोहसिन होना इत्तेबाए सुन्नत है, ये दो चीजें आ जाएंगी। अगर वो भी असलम वजहू लिल्ला ना हुआ, लिए संबड़ी हो गया, किसी और के लिए भी हो गया, खुलूस नहीं रहा। अक्सर ऐसा होता है ना, सुन्नत के मुताबिक भी है लेकिन बस खुलूस नहीं रहा, उसमें रियाकारी आ गई, तो तब भी नहीं कबूल होगा। ये दो शर्तें दोनों ही जरूरी है। फल हु अजरु इंद रब्बी, तो तब उसका अजर उसके रब के पास है। जब अल्लाह ताला कह दे कि तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए मेरे पास अजर है, उसके रब के पास अजर रखा हुआ है, तो कितनी खुशी होगी कि वो जब अजर देगा तो कितना बड़ा होगा। वला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून, उनके लिए खुशखबरी है, कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, फिर सारे गम खत्म। और देखें पहले आ रही है सिंगुलर में बात, फिर आई है प्लूरल में बात। देखिए पहले फला हुम नहीं है, उसके बाद है अलैहिम, इसलिए कि बहुत दफा दुनिया में इंसान ये काम करने में अकेला ही होता है, उसकी कोई सपोर्ट नहीं होती। लेकिन उसके बाद जब अल्लाह के पास जाएगा, बहुत सारे उसको अपने ईमान वाले साथी मिलेंगे, एक जमात में दाखिल हो जाओगे तो पूरी जमात को कोई खौफ नहीं होगा और कोई रंज नहीं होगा। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए इन आयात की।
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون